पद 40 का गुप्त इतिहास, मना संख्या 20,
दूसरा हाय, भाग 7, यहेज़केल।
ये एक ग्राह्य बाइबलीय समझ है कि भविष्यद्वक्ता यहेज़केल को उसकी आरंभिक आयतों में 30 वर्ष का माना जाए।
अब 30वें वर्ष में चौथे महीने के 5वें दिन, जब मैं केबार नदी के किनारे बंधुओं के बीच था, तब आकाश खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन देखे। महीने के 5वें दिन, जो राजा यहोयाकीन की बंधुआई के 5वें वर्ष में था, यहोवा का वचन स्पष्ट रूप से याजक बूजी के पुत्र यहेज़केल के पास कसदियों के देश में केबार नदी के किनारे पहुंचा, और वहां यहोवा का हाथ उस पर था। यहेज़केल 1:2-3।
कुछ लोग मानते हैं कि 30वां वर्ष एक विशिष्ट जुबिली चक्र पर आधारित है, जो राजा योशिया के साथ आरंभ हुआ और अध्याय 40 के पद 1 पर समाप्त हुआ।
हमारी बंधुआई के 25वें वर्ष में, वर्ष के आरंभ में, महीने के 10वें दिन, उस नगर के मारे जाने के 14वें वर्ष में, उसी दिन यहोवा का हाथ मुझ पर था और वो मुझे वहां ले गया। यहेज़केल लेख 40:1।
बाइबिलीय कालक्रम विद अध्याय 40 के पद 1 की तिथि 28 अप्रैल या 22 अक्टूबर 593 ईसा पूर्व ठहराते हैं। सभी भविष्यद्वक्ता अंतिम दिनों की पहचान करते हैं, इसलिए 22 अक्टूबर 593 ईसा पूर्व की पतन ऋतु की तिथि उस रेखा की ओमेगा तिथि है, जो 50 वर्ष पूर्व 5 मई 622 ईसा पूर्व को, जिसे योशियाह का महान फसह कहा जाता है, आरंभ हुई थी। संख्या 30 उन याजकों का प्रतीक है जिन्हें सेवा आरंभ करते समय 30 वर्ष का होना आवश्यक था। चाहे यहेज़केल लुंद 1 के पद 1-3 यहेज़केल की आयु 30 वर्ष बताता हो, अथवा केवल एक याजक के प्रतीक के रूप में उसे भी 30 वर्ष का निरूपित करता हो, यदि पद 1 के 30 वर्ष, जैसा कि अन्य लोग मानते हैं, 622 ईसा पूर्व में योशिया के महान फसह के बाद के तृतीय दशक का संकेत करते हों, तब भी भविष्यदर्शी निहितार्थ वही रहते हैं।
योशिया का अर्थ नींव है, और उसका महान फसह एक जुबली काल का आरंभ था, जो 573 ईसा पूर्व में प्रायश्चित के दिन 22 अक्टूबर को समाप्त हुआ। योशिया से 22 अक्टूबर तक की जुबिली रेखा 1:48:40 से 1:48:44 के इतिहास के साथ मेल खाती है। 48:40 की नींव का प्रतिनिधित्व राजा योशिया ने किया, और साथ ही योशिया लिच ने भी। 22 अक्टूबर का प्रतिनिधित्व जुबिली की तुरही के सींग के फूंके जाने के साथ साथ प्रायश्चित के दिन के सींग के द्वारा किया गया।
और तू अपने लिए वर्षों के 7 सप्त गिनना, अर्थात 7 बार 7 वर्ष, और उन 7 सप्तों के वर्षों की अवधि तेरे लिए 49 वर्ष होगी। तब 7वें महीने के 10वें दिन, अर्थात प्रायश्चित के दिन, तू जुबली का नरसिंगा फुकवाना। तुम अपने सारे देश में वो नरसिंगा फुकवाना। लेव्य व्यवस्था 25:8-9।
यहेज़केल को राजा योशिया से 22 अक्टूबर तक की जुबली रेखा के भीतर स्थापित किया गया है, जो 1840 से 1844 तक प्रकाशित वाक्य 10 के प्रथम और द्वितीय स्वर्गदूतों का प्रतिनिधित्व करती है। यहेज़केल प्रथम और द्वितीय स्वर्गदूतों के मिलराइटों तथा तृतीय स्वर्गदूत के 1,44,000 का प्रतिनिधित्व करता है। यहेज़केल 1,44,000 के याजकत्व का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु उसका प्रमुख भविष्य सूचक गुण ये है कि वो एक भविष्यद्वक्ता है।
भविष्यद्वक्ता, याजक और राजा,
बाइबल के ऐसे 3 पात्र हैं जिन्होंने 30 वर्ष की आयु में सेवा करना आरंभ किया। यहेज़केल के साथ दाऊद और यूसुफ भी थे, क्योंकि उन सब ने 30 वर्ष की आयु में सेवा आरंभ की। वे सब याजक हैं। दाऊद राजा का प्रतीक है, यूसुफ याजक है, और यहेज़केल महिमा के उस त्रिविध राज्य में भविष्यद्वक्ता है, जो एक भविष्यद्वक्ता, एक याजक और एक राजा से मिलकर बना है।
तथापि हम भविष्यद्वक्ता यहेज़केल को प्रतीक के रूप में जिस प्रकार भी लागू करें, वो एक याजक है, और जब उसे योशिया से 22 अक्टूबर तक जुबली की रेखा में लागू किया जाता है, तब यहेज़केल एक ऐसे याजक का प्रतिनिधित्व करता है जो 1,44,000 की मुहरबंदी के समय में याजक का प्रतिनिधि होगा, जैसा कि 51:40 से 51:94 के इतिहास तथा राजा योशिया से 22 अक्टूबर 577 ईसा पूर्व तक द्वारा प्रतिरूपित किया गया है।
22
बाइबल स्पष्ट करती है कि यहेज़केल ने 22 वर्षों तक सेवा की। 22 1,44,000 का प्रतीक है, जो दिव्यता और मानवता के संयुक्त ध्वज चिन्ह है। योशिया के फसह से लेकर
40वें अध्याय के 22 अक्टूबर के जुबली उत्सव तक निरूपित इतिहास में योशिया का फसह 1880 और 1840 में जोशिया लिच के कार्य का प्रतिरूप था। वो कार्य प्रथम और द्वितीय हाय की समय संबंधी भविष्यद्वाणियों को प्रस्तुत करना था। अब ये देखा जा सकता है कि प्रथम और द्वितीय हाय की भविष्यद्वाणी उन अग्रदूतों की समझ से कहीं अधिक व्यापक है।
बाइबिलीय नबी के रूप में यहेज़केल अपने लेखनों में किसी भी अन्य बाइबिलीय लेखक की अपेक्षा अधिक विशिष्ट तिथियों का उल्लेख करता है। यहेज़केल बाइबिलीय भविष्यद्वाणी में एक दिन एक वर्ष के बराबर सिद्धांत का ओमेगा है। गिनती की पुस्तक में दिन वर्ष सिद्धांत का अल्फा उल्लेख कादेश में हुए प्रथम विद्रोह में प्रकट होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जंगल में 40 वर्षों तक भटकना पड़ा। अंतिम अर्थात ओमेगा विद्रोह यहेज़केल द्वारा चौथे अध्याय में उस समय चित्रित किया गया है जब यरूशलेम नाश किया जाता है।
अल्फा,
जिन दिनों तक तुमने उस देश का भेद लिया अर्थात 40 दिन, उन दिनों की गिनती के अनुसार एक एक दिन के बदले एक एक वर्ष मानकर तुम अपने अधर्मों का भार 40 वर्ष तक उठाओगे और तुम मेरी प्रतिज्ञा भंग को जानोगे। मैं यहोवा ने कहा है, निश्चय मैं इस समस्त दुष्ट मंडली के विरुद्ध ऐसा ही करूंगा जो मेरे विरोध में इकट्ठी हुई है। इसी जंगल में वे नष्ट किए जाएंगे और यही मर जाएंगे। गिनती 14:03-5-3।
ओमेगा,
तू अपनी बाई करवट भी लेट और इज़राइल के घराने का अधर्म उस पर रख। जितने दिनों तक तू उस पर लेटा रहेगा उतने ही दिनों तक तू उनके अधर्म का भार उठाएगा, क्योंकि मैंने उनके अधर्म के वर्षों को दिनों की संख्या के अनुसार तुझ पर रखा है अर्थात 390 दिन। इस प्रकार तू इज़राइल के घराने का अधर्म उठाएगा और जब तू उन्हें पूरा कर ले तब फिर अपनी दाहिनी करवट लेटना और तू यहूदा के घराने का अधर्म 40 दिन तक उठाएगा। मैंने तेरे लिए एक एक दिन एक एक वर्ष के लिए ठहराया है, इसलिए तू अपना मुख यरूशलेम की घेराबंदी की ओर लगाए रखना और तेरी बाँह उघाड़ी हुई रहे और तू उसके विरुद्ध भविष्यद्वाणी करना। यहेज़केल 4:4-5।
कादेश और यरूशलेम का विनाश अल्फा और ओमेगा विद्रोह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक दिन एक वर्ष के सिद्धांत को दर्शाता है। एक दिन एक वर्ष का सिद्धांत मिलर राइटों का प्रमुख नियम था और 1840 से 1844 के इतिहास में भी, जैसा कि राजा योशिया की जयंती रेखा से 22 अक्टूबर तक प्रतिरूपित किया गया है, यहेज़केल किसी भी अन्य भविष्यद्वक्ता की अपेक्षा अधिक तिथियां प्रस्तुत करता है। यहेज़केल की तिथि व्यवस्था के भीतर जयंती की रेखा की पहचान की जाती है जो यहेज़केल की साक्षी को प्रत्यक्ष रूप से पहले और दूसरे स्वर्गदूतों के इतिहास और उसके पश्चात तीसरे स्वर्गदूत के इतिहास से जोड़ती है।
जुबली रेखा के साथ साथ यहेज़केल 390 दिनों तक अपनी एक करवट पर लेटा रहता है, फिर 40 दिनों तक अपनी दूसरी करवट पर। 430 पुराने और नए वाचाओं का एक प्रतीक है, क्योंकि अब्राम की उस वाचा प्रतिज्ञा को, जिसमें मिस्र में 400 वर्षों की बंधुआई का उल्लेख था, प्रेरित पौलुस के द्वारा 30 वर्षों की दूसरी साक्षी मिली। इस प्रकार पुराने के अब्राम, जो बाद में इब्राहिम कहलाया, और नए के शाऊल, जो बाद में पौलुस कहलाया, ने अपनी अपनी साक्षियों को मिलाकर 430 वर्षों को अनंत वाचा के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। 390 दिन तू इसराइल के घराने के अधर्म को उठाए रहेगा और तू यहूदा के घराने के अधर्म को 40 दिन तक उठाए रहेगा। इस प्रकार दाहिनी करवट और बाईं करवट मिलकर अब्राम और पौलुस के तुल्य है।
वाचा सदा ही आज्ञाकारिता या अनाज्ञाकारिता, जीवन या मृत्यु पर आधारित थी। मिलरवादी इतिहास में वर्ष दिन सिद्धांत जीवन या मृत्यु का विषय था और इस इतिहास की घोषणा पहले स्वर्गदूत द्वारा सनातन सुसमाचार के रूप में की गई थी। सुसमाचार जीवन या मृत्यु का विषय है और मिलरवादी इतिहास की जीवन या मृत्यु की परीक्षात्मक कसौटी उस सिद्धांत के संदर्भ में स्थापित की गई थी कि एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। वो भविष्यवाणी जिसने पहले स्वर्गदूत के संदेश को सामर्थ्य प्रदान की, दूसरे हाय की 391 वर्ष और 15 दिन की भविष्यवाणी थी। उन 390 दिनों के भीतर, जिनमें यहेज़केल अपनी बाई करवट पर लेटा रहा, दूसरे हाय की 391 वर्ष और 15 दिन की समय भविष्यवाणी का एक दृष्टांत निहित है।
भविष्यवाणी को ठीक प्रकार से विभाजित करने के लिए भविष्यदर्शी विवेक की आवश्यकता होती है, परंतु ये यहूदा के गोत्र के सिंह द्वारा मध्यरात्रि के पुकार के संदेश की मुहरें खोलने का निरंतर कार्य ही है।
मैं ये प्रतिपादित करता हूँ कि यहेज़केल को 144,000 का प्रतीक माना जाना चाहिए, परंतु मुख्यतः भविष्यवाणी की आत्मा के वरदान के प्रतीक के रूप में, चाहे वो अंतिम दिनों के किसी भविष्यद्वक्ता की अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया हो अथवा उस वाचा प्रजा की अभिव्यक्ति के रूप में जो पंक्ति पर पंक्ति की पद्धति के सिद्धांत को समझती है। मैं ये प्रतिपादित करता हूँ कि 391 वर्ष और 15 दिन की भविष्यवाणी पर यहेज़केल का प्रकाश उस धूल झाड़ू वाले मनुष्य के बड़े संदूक में रत्नों को डालने के साथ सामंजस्य रखता है। मैं ये प्रतिपादित करता हूँ कि जब मंदिर पूर्ण हो जाता है तब यहेज़केल से प्राप्त ज्योति शिखर पत्थर के संदेश का एक अनिवार्य तत्व है। यहेज़केल 40वें अध्याय के प्रथम पद में 22 अक्टूबर पर है और वहीं यहेज़केल को भावी मंदिर का दर्शन दिया जाता है। वो मंदिर 144,000 का मंदिर है, जिनकी उस संख्या का यहेज़केल एक प्रतीक है। वो समूह तीसरी और निर्णायक परीक्षा तक पहुंचने से पहले दो परीक्षाओं से होकर गुजर चुका होगा। यहेज़केल को मंदिर में अपना प्रकाश प्राप्त करते हुए चित्रित किया गया है और इसलिए वो प्रकाश जो वो एक प्रतीक के रूप में उत्पन्न करता है उस प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है जो तब आता है जब परमेश्वर की प्रजा दानियेल अध्याय 10 के अनुरूप परम पवित्र स्थान में प्रवेश करती है। यीशु मसीह के प्रकाशन का जो प्रकाश खोला गया है वो अनुग्रह अवधि के समाप्त होने से ठीक पहले खोला जाता है।
और उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यद्वाणी के वचनों पर मुहर न लगा, क्योंकि समय निकट है। जो अधर्मी है वो अधर्मी ही बना रहे, और जो अशुद्ध है वो अशुद्ध ही बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी ही बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र ही बना रहे। प्रकाशित वाक्य 22:10-11।
पद 11 में जब अनुग्रह अवधि समाप्त होने ही वाली होती है तब समय निकट है, और इसलिए उसी समय यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य अनमुद्रित होता है, क्योंकि समय निकट है।
यीशु मसीह का प्रकाशन जो परमेश्वर ने उसे इसलिए दिया कि वो अपने दासों को वे बातें दिखाए जिनका शीघ्र ही घटित होना अवश्य है, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर अपने दास यूहन्ना पर उसके द्वारा उसे प्रकट किया। यूहन्ना ने परमेश्वर के वचन की और यीशु मसीह की गवाही की और उन सब बातों की जो उसने देखी साक्षी दी। धन्य है वो जो इस भविष्यद्वाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और जो बातें इसमें लिखी हैं उन्हें मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रकाशित वाक्य 1:3।
रविवार व्यवस्था के समय लौदीकिया 7वें दिन के एडवेंटवाद के लिए अनुग्रह अवधि समाप्त हो जाती है, और यहेज़केल के 9वें अध्याय में एडवेंटवाद को यरूशलेम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वहां जो लोग देश और कलीसिया में किए जाने वाले घृणित कामों के कारण आहें भरते और विलाप करते हैं वे मुहर प्राप्त करते हैं। मुहर लगाया जाना उस समय होता है जब इस्लाम की पूर्वी आंधियां राष्ट्रों को क्रोधित कर रही होती है, ठीक उससे पहले कि अनुग्रह अवधि समाप्त हो जाए। यहेज़केल के 8वें अध्याय में एडवेंटवाद की 4 पीढ़ियां समाप्ति को पहुंचती है, जिसमें चौथी पीढ़ी को सूर्य के सामने झुकने वाले 25 अगुओं के द्वारा प्रतीकित किया गया है। वो दर्शन प्रतीकात्मक रूप से रविवार के विधान से एक दिन पहले अथवा अनुग्रह अवधि के समापन से ठीक पूर्व दिया गया था, जैसा कि 666 द्वारा निरूपित है।
और 6ठे वर्ष 6ठे महीने के 5वें दिन ऐसा हुआ कि जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदा के प्राचीन मेरे सामने बैठे थे, तब वहां प्रभु यहोवा का हाथ मुझ पर आ पड़ा। तब मैंने देखा और देखो आग के समान एक स्वरूप था, उसकी कटी के रूप से नीचे की ओर आग थी और उसकी कटी के रूप से ऊपर की ओर चमक के समान मानो काहरूबा के रंग जैसा तेज था, और उसने हाथ के समान एक आकृति बढ़ाई और मेरे सिर की एक लट पकड़ ली। तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच उठा लिया और परमेश्वर के दर्शनों में मुझे यरूशलेम में भीतर के उस फाटक के द्वार पर पहुंचा दिया जो उत्तर की ओर मुख किए हुए था, जहां डाह उत्पन्न करने वाली उस मूरत का आसन था जो डाह उत्पन्न करती है, और देखो वहां इसराइल के परमेश्वर की महिमा उपस्थित थी उस दर्शन के अनुसार जो मैंने मैदान में देखा था। यहेजकेल 8:10 तक गिरजद।
छठे वर्ष छठे महीने और पांचवें दिन का दर्शन 666 से ठीक पहले आया, जो रविवार के विधि का एक प्रतीक है, जब लाओदीकियाई एडवेंटवाद के लिए अनुग्रह अवधि समाप्त हो जाती है। वो दर्शन उस दर्शन के अनुसार था जिसे यहेजकेल ने मैदान में देखा था। जो दर्शन उसने मैदान में देखा था वो इससे पहले तीसरे अध्याय में पाया जाता है।
तब मैं उठा और मैदान की ओर निकल गया, और देखो वहाँ यहोवा का तेज खड़ा था, उसी तेज के समान जिसे मैंने कबार नदी के पास देखा था, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। यहेजकेल 3:2-3।
मैदान का दर्शन, जो छठे वर्ष छठे महीने और पांचवें दिन का दर्शन था, वही दर्शन था जिसे यहेजकेल ने इससे पहले कबार नदी के पास देखा था।
अब 30वें वर्ष में चौथे महीने के पांचवें दिन, जब मैं केबार नदी के किनारे बंदियों के बीच था, तब आकाश खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन देखे। यहेजकेल 1:8।
वे परमेश्वर के दर्शन जिन्हें यहेजकेल ने केबार नदी के किनारे देखा, मैदान का दर्शन था, और वही यहेजकेल अध्याय 8:11 का भी दर्शन था। वे दर्शन उस संदर्भ में प्रस्तुत किए गए थे जिसमें यहेजकेल पवित्र स्थान के भीतर देख रहा था, और वही अध्याय 10 का मराह दर्पण दर्शन पूरा होता है। यहेजकेल उनका प्रतिनिधित्व करता है जो महापवित्र स्थान से प्रसारित होने वाले भविष्यवाणी के प्रकाश में सहभागी होते हैं, जब अनुग्रह काल के समापन से ठीक पहले यीशु मसीह का प्रकाशन प्रकट किया जाता है। जब हम राजा योशिया की उस जुबली रेखा की पहचान करते हैं जो फसह से आरंभ होकर 22 अक्टूबर को समाप्त होती है, तब हम लेव्य व्यवस्था 23 में प्रस्तुत वसंतकालीन पर्वों और शरतकालीन पर्वों के प्रतीक की पहचान कर रहे होते हैं। वहाँ वसंत और शरद ऋतु के पर्व प्रत्येक 22 पदों में प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे यहेजकेल की सेवकाई 22 वर्षों की थी। जुबली रेखा के 30वें वर्ष में यहेजकेल को स्थापित करने से यहेजकेल का जन्म योशिया के पुनरुत्थान के साथ संरेखित हो जाता है। यदि वो जुबली चक्र के 30वें वर्ष में 30 वर्ष का था, तो यहेजकेल का जन्म योशिया के सुधार के समय हुआ होगा। यहेजकेल उन लोगों का एक प्रतीक है जो विश्वास के द्वारा परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। वहां पहुंचने पर वे पहियों के भीतर पहियों को देखते हैं जो मानवीय परस्पर क्रियाओं के जटिल परस्पर विन्यास का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 में यूहन्ना के समान यहेजकेल मिलेराइटों का, परंतु उससे भी अधिक प्रत्यक्ष रूप से 144,000 का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी समानांतर 391 वर्ष और 15 दिन की समय भविष्यद्वाणी यरूशलेम के विनाश के साथ लौदीकियाई एडवेंटिज्म के अंतिम न्याय को चित्रित करती है, और इसमें 38 और 40 की पहेली भी सम्मिलित है। इसमें 430 वर्षों का प्रतीकात्मक अर्थ सम्मिलित है। इसमें वो 4 वर्षीय अवधि सम्मिलित है जिसका प्रतिनिधित्व 1333 से 1337, 1400 से 1007 और 1840 से 1845 द्वारा किया गया है। हम इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार अगले लेख में आरंभ करेंगे।
यशायाह यहेजकेल लाल और यूहन्ना को दी गई दर्शनों में हम देखते हैं कि स्वर्ग पृथ्वी पर घटित होने वाली घटनाओं के साथ कितनी निकटता से जुड़ा हुआ है, और जो लोग उसके प्रति निष्ठावान हैं उनके लिए परमेश्वर की चिंता कितनी महान है। टेस्टिमनीज खंड 5:745। मसीही स्वयं मंदिर के प्रभु थे, जब वे उसे छोड़कर चले जाते तब उसकी महिमा भी चली जाती, वह महिमा जो कभी परम पवित्र स्थान में करुणासन के ऊपर दृश्यमान थी, जहां महायाजक वर्ष में केवल एक ही बार प्रायश्चित के महान दिन पर बलि किए गए पशु के लहू के साथ प्रवेश करता था, जो परमेश्वर के पुत्र के उस लहू का प्रतिरूप था जो संसार के पापों के लिए बहाया गया और उसे वेदी पर छिड़कता था। यही शेखीना थी, यहोवा का दृश्यमान निवास मंडप। यही वो महिमा थी जो यशायाह पर प्रकट की गई जब वो कहता है, जिस वर्ष राजा उज्जियाह मर गया उस वर्ष मैंने भी प्रभु को एक ऊंचे और उठाए हुए सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र का छोर मंदिर में भर गया। यशायाह 6:1 तक उद्धृत। द सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट बाइबल कमेंट्री खंड 4:1139। यशायाह को दी गई ये दर्शन झांकी अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा की दशा का प्रतिनिधित्व करती है। उन्हें ये विशेष अधिकार प्राप्त है कि वे विश्वास के द्वारा उस कार्य को देखें जो स्वर्गीय पवित्र स्थान में आगे बढ़ रहा है, और स्वर्ग में परमेश्वर का मंदिर खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। जब वे विश्वास के द्वारा परम पवित्र स्थान में दृष्टि डालते हैं और स्वर्गीय पवित्र स्थान में मसीह के कार्य को देखते हैं, तब वे समझते हैं कि वे अशुद्ध होठों वाली प्रजा हैं, ऐसी प्रजा जिसके होठों ने बार बार व्यर्थ बातें कही हैं और जिसकी प्रतिभाएं परमेश्वर की महिमा के लिए पवित्र ठहराई और उपयोग में नहीं लाई गई हैं। जब वे अपनी ही दुर्बलता और अयोग्यता की तुलना मसीह के महिमामय चरित्र की पवित्रता और मनोहरता से करते हैं, तब उनका निराश हो जाना स्वाभाविक है। परंतु यदि वे यशाया के समान उस प्रभाव को ग्रहण करें जिसे प्रभु हृदय पर अंकित करना चाहता है, यदि वे परमेश्वर के सम्मुख अपने प्राणों को दीन करें, तो उनके लिए आशा है। प्रतिज्ञा का धनुष सिंहासन के ऊपर है और जो कार्य यशाया के लिए किया गया था वही उनमें भी किया जाएगा। परमेश्वर दीन हृदय से उठने वाली प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। परमेश्वर के इस महान और गंभीर कार्य का उद्देश्य स्वर्गीय कोठार के लिए फूलों को इकट्ठा करना है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण की जानी है। तब जब लोग प्रचलित दुष्टता को देखें और अशुद्ध होठों से निकलने वाली वाणी को सुने, तो उनमें से कोई भी निराश न हो। जब अंधकार की शक्तियां परमेश्वर की प्रजा के विरुद्ध मोर्चा बांधें, जब शैतान अंतिम महान संघर्ष के लिए अपनी सेनाओं को एकत्र करे और उसकी शक्ति महान तथा लगभग अभिभूत कर देने वाली प्रतीत हो, तब दिव्य महिमा का स्पष्ट दर्शन उस सिंहासन का जो ऊंचा और उठाया हुआ है और प्रतिज्ञा के धनुष से आच्छादित है सांत्वना, आश्वासन और शांति प्रदान करेगा। रिव्यू एंड हेरल्ड, December 22, 1896। केबार नदी के तट पर यहेजकेल ने उत्तर दिशा से आती हुई एक बवंडर सी वस्तु देखी, एक बड़ा बादल और अपने आप में लिपटती हुई आग और उसके चारों ओर एक ज्योति और उसके बीच में से मानो कहरुबा के समान रंग, अनेक पहिए जो एक दूसरे को काटते हुए थे, चार जीवित प्राणियों द्वारा चलाए जा रहे थे। इन सब के बहुत ऊपर एक सिंहासन की सी आकृति दिखाई देती थी जो नीलमणि के पाषाण के समान थी, और उस सिंहासन की सी आकृति के ऊपर उसके ऊपर एक मनुष्य के समान रूप दिखाई देता था, और करूबों में उनके पंखों के नीचे मनुष्य के हाथ का सा आकार दिखाई देता था। यह स्केल 1:4, 26:10-8 उन पहियों की व्यवस्था इतनी जटिल थी कि पहली दृष्टि में वे अव्यवस्थित प्रतीत होते थे, परंतु वे पूर्ण सामंजस्य के साथ चलते थे। स्वर्गीय प्राणी जो करूबों के पंखों के नीचे स्थित हाथ द्वारा संभाले और संचालित किए जाते थे, उन पहियों को गति दे रहे थे। उनके ऊपर नीलमणि के सिंहासन पर अनंत परमेश्वर विराजमान था, और सिंहासन के चारों ओर इंद्रधनुष था जो दैवीय करुणा का प्रतीक है। जिस प्रकार पहियों के समान जटिल व्यवस्थाएं करूबों के पंखों के नीचे के हाथ के निर्देशन में थीं, उसी प्रकार मानवीय घटनाओं की जटिल गति भी दैवी नियंत्रण के अधीन है। राष्ट्रों के संघर्ष और कोलाहल के बीच जो करूबों के ऊपर विराजमान है, वही अब भी पृथ्वी के कार्यों का मार्गदर्शन करता है। उन राष्ट्रों का इतिहास जिन्होंने एक के बाद एक अपने लिए नियत समय और स्थान ग्रहण किया और अनजाने में उस सत्य की गवाही दी जिसका अर्थ वे स्वयं नहीं जानते थे, हमसे बातें करता है। आज प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी महान योजना में एक स्थान प्रदान किया है। आज मनुष्य और राष्ट्र उस जन के हाथ की सीस डोरी से मापे जा रहे हैं जो कोई भूल नहीं करता। सब अपने ही चुनाव द्वारा अपना भाग्य निर्धारित कर रहे हैं और परमेश्वर अपनी अभिप्रेत योजनाओं की पूर्ति के लिए सब पर शासन कर रहा है। वह इतिहास जिसे महान मैं हूँ ने अपने वचन में चिह्नित किया है, भविष्यवाणी की श्रृंखला में कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए अतीत की अनंतता से भविष्य की अनंतता तक हमें बताता है कि युगों की क्रमिक यात्रा में आज हम कहाँ खड़े हैं और आने वाले समय में क्या अपेक्षित है। जो कुछ भविष्यवाणी ने घटित होने के लिए पहले से कहा था, वर्तमान समय तक वो इतिहास के पृष्ठों पर अंकित हो चुका है, और हम निश्चिंत हो सकते हैं कि जो कुछ अभी आना शेष है वो भी अपने क्रम में पूरा होगा। एजुकेशन 718।